ऑप्शन यथाशक्ति से सर्वशक्ति संपन्न की ओर।
ओम शांति। भारत के कोने कोने से पधारे हुए आप सब भाई बहनों से बाबा के स्नेही बच्चों से कल पहले अर्थात 5000 वर्ष पहले की तरह मिलकर हमें कितनी खुशी हो रही है। ये हमारी मुलाकात बाबा के घर में ही हो सकती है। अगर हम अलग अलग आपसे मिलना चाहें जा करके तो कितना टाइम लग जाएगा। तो ये भी बाबा की एक कमाल है कि किस तरह वो अपने परिवार को जैसे दुनिया में परिवार वाले आपस में कोई विशेष अवसर होता है तो इकट्ठे होते हैं, बहुत बड़ा अवसर होता है तो इतने सारे इकट्ठे होते हैं, इसीलिए बाबा इसको कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ के मेले में आत्माएं आकर के सागर के कंठे पर इकट्ठी होती हैं। तो आप सबसे मिलकर हमें बहुत खुशी है। जैसे किसी घर में छोटा बच्चा कोई पैदा होता है तो नए बच्चे की और भी खुशी होती है। सब लोग उसको देखते हैं, हमारी फैमिली में कौन ऐड हो गया। इसी प्रकार से बाबा के बहुत से नए बच्चे आए हैं तो सबसे पहले हम सब ये देखना चाहेंगे कि कितने बाबा के बच्चे जो पहली बार इस कल्प में आए हैं वो जरा हाथ उठाइए और एक दूसरे को देखिए। मेरे ख्याल में इस सभा में कम से कम 40% तो बैठे हैं। ठीक है, आजकल के परिवार को सीमित करने के जमाने में जहां लोग चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि हमारा परिवार ना बढ़े, परिवार बढ़ना मैंने मुसीबत आज के जमाने में, क्योंकि हर पर चीज की कमी होती जा रही है। केवल एक सारे विश्व में ऐसा परिवार है जिसमें बढ़ने की खुशी होती है। तो अगर किसी परिवार में 40% नए बच्चे बढ़ जाएं और वो बढ़ने की खुशी मनाने वाले हो तो आप सोचिए कितनी खुशी होगी। तो बाबा को भी बहुत खुशी होती है। बाबा तो अब हजारों की बात नहीं, बाबा लाखों की संख्या में वृद्धि चाहते हैं। अब दादी जी ने सबको क्या डायरेक्शन दिया है कि हर एरिया में 1-1 लाख बढ़ने चाहिए। तो आप सोचिए ऐसा वंडरफुल परिवार सिवाय परमात्मा के और किसी का नहीं हो सकता। दूसरी बात, लौकिक परिवार कर्मों के बोझ के हिसाब से बनता है, खास तौर पर कलयुग के अंत में जितना भी हमारा लौकिक परिवार है वो किस हिसाब से मिलता है। कर्मों के चुकतू करने के हिसाब से मिलता है। क्या हम अपने पिछले कर्मों का खाता लौकिक परिवार में चुकतू कर सक पाते हैं? तो आप देखेंगे कि नहीं कर पाते हैं। पिछला उधार चुकाते चुकाते और उधार चढ़ा लेते हैं। आप देखेंगे कि आजकल जब पिछले उधार वाला बार बार तंग करता है, मेरा पैसा लाओ मेरा पैसा लाओ, बहुत समय हो गया तुमने वायदा किया था, तो क्या करते हैं, कोई नया उधार लेकर उसको चुकतू कर देते हैं। इसी प्रकार से हम भी, अभी बाबा की मुरली में आया था कि एक जन्म का हिसाब उस जन्म में अथवा गर्भ में चुकतू नहीं कर पाते, बोझ बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो लौकिक परिवार जो मिलता है वो हमारे बोझ को बढ़ाता ही जाता है। अच्छा, फिर हम खुशी से भी, अपनी मर्जी से भी जो लौकिक संबंध पैदा करते हैं, जैसे लोग शादी करते हैं, ये कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, या मित्र बनाते हैं, या कोई बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं, अपनी मर्जी से भी जो लौकिक दुनिया में संबंध संपर्क हम बढ़ाते हैं, उससे क्या होता है? सोचते यही हैं कि हमें और हमारा बोझ घटेगा, हमें खुशी मिलेगी। परंतु दोनों ही जो संबंध जोड़ रहे हैं बोझ में दबे हुए हैं। तो बोझ में दबा हुआ दूसरे बोझ में दबे हुए का बोझ कैसे हल्का करेगा? क्या होता है, थोड़ी देर की खुशी रहती है। जैसे कभी आपने देखा होगा सड़क पर दो सिर के ऊपर लकड़ियों का गठड़े का बोझ लेकर जा रहे हैं, कभी देखा होगा, माउंट आबू में खास तौर पे होता है। तो एक दूसरे से मिलते हैं, खड़े हो जाते हैं, हंसते हैं, थोड़ी देर के लिए गठड़ा उतार के आपस में बात करते हैं तो बोझ हल्का महसूस होता है, क्योंकि खुशी होती है उस समय के लिए। फिर क्या करते हैं, फिर अपना अपना गठड़ा उठा के चल पड़ते हैं, तो बोझ तो नहीं घटा। तो सबको जीवन का अनुभव है। अच्छा, और तो और अपने शरीर को ही ले ले, जो हमें सबसे प्यारा लगता है, जो हमें परमात्मा से दूर रखता है। अभी बहन जी क्या बता रही थी कि हम आत्मा बनते नहीं, शरीर बन के ही चलते रहते हैं। तो शरीर क्या है, बोझ है, लेकिन प्यारा बोझ है, प्यारा लगता है। क्यों? शरीर से मोह है। बाबा कहता है मोह एक विकार है। कहता है या नहीं कहता है? मोह विकार है। कितने यहां आत्माएं हैं भाई बहन जो ये मानते हैं कि मोह एक विकार है? वो जरा हाथ उठाओ, मोह विकार है, धीरे धीरे उठा रहे हैं। क्या मोह अच्छी चीज है? मीठी चीज तो है। अच्छा, सब कहते हैं कि मोह एक विकार है। अच्छा, अगर मोह एक विकार है तो शरीर से मोह रखना क्या हुआ? शरीर से मोह रखना क्या हुआ? अगर हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो सबसे पहला विकार और सबसे मुश्किल विकार जो अंत तक साथ चलता है वो छोड़ना कौन सा होगा? शरीर। यहां तक कि बाबा कहते हैं कि सन्यासी भी स्वयं को पावन नहीं कह सकते। क्यों? आत्मा शुद्ध है। चलो अभी अभी आत्मा परम धाम से आई है, ऐसा ही मान लो। द्वापर से लेकर आत्माएं जो ताजा ताजा परम धाम से उतरती है फर्स्ट जन्म में, वो प्योर हैं कि नहीं हैं? हैं? अच्छा, वो प्योर हैं। लेकिन धरती पर आते ही फर्स्ट जन्म में ही वो रावण की पिंजरे में आ जाती है। क्यों? शरीर का मोह, फंस जाती है। तो अगर इस सबसे पहले हमने निर्विकारी बनना है, अगर अहंकार को भी छोड़ना है, अगर लोभ को भी छोड़ना है, अगर क्रोध को भी छोड़ना है, काम को भी छोड़ना है, तो ये मीठा विकार जिसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है, कभी भी हम पुरुषार्थ करते हैं या दूसरे को पुरुषार्थ करने को कहते हैं, तो और बातें जरूर करते हैं। क्रोध तो सबको मालूम है, गरम गरम कड़वी कड़वी चीज है, तो क्रोध गुस्सा जलाता है, खुद को भी जलाता है, दूसरे को भी जलाता है। काम उसको भी अग्नि कहा जाता है। बहन जी बता रही थी कि काम की अंधे होकर के वो क्या होता है, मुर्दा को कश्ती मान लेते हैं। परंतु ये जो मोह है ये बहुत मीठी चीज है। हम दशरथ का मिसाल देते हैं कि दशरथ बेचारा राम के मोह में क्या हुआ, उसको सुइसाइड कर लिया, हाय मेरा बेटा। और बाबा जिनको शक्तियां कहते हैं, शिव शक्तियां, उनमें कौन सा विकार बैलेंस में ज्यादा होता है, कौन सा होता है? मोह। और शक्ति बनने के लिए बीच में जो रुकावट आती है वो मोह की आती है। जितनी शिव शक्तियां बनी, जितने पांडव पावरफुल पांडव बने, उसका मुख्य आधार था क्या? मोह। अगर गीता का भी लास्ट जो चैप्टर है, सारी मेहनत करने के बाद क्या था, क्या बनने का था? नष्टो मोहा। और देखिए उसके साथ दूसरा शब्द क्या है, स्मृति लब्ध। क्या मतलब? जितना जितना मोह का नाश होगा उतना उतना ही परमात्मा की स्मृति बढ़ेगी। या यूं कहें, जितना जितना परमात्मा की स्मृति बढ़ेगी उतना उतना मोह का नाश होगा। अंत में जाके संपूर्ण स्मृति स्वरूप बनना हो या सर्वशक्ति संपन्न बनना हो तो क्या होगा? कंप्लीट मोह का नाश। अर्जुन यानी आत्मा क्या कहती है? परमात्मा अब मेरी आंखें खुल गई हैं। कौन सी आंख? दो तो पहले ही खुली थी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं कि तीसरी भी खुल गई है। ऐसे नहीं कि दो बंद होने से तीसरी खुलेगी। इस ज्ञान में आंखें बंद करने का प्रथा नहीं है, तीनों खुल गई हैं। इस कारण से अब मेरा मोह नष्ट हो गया। और मजे की बात यह है कि सन्यासी लोग मोह को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जिस चीज से मोह है उससे दूर भाग जाओ या उसको दूर भगा दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सब चीजों से परे हो जाओ तो मोह खत्म हो जाएगा। बेचारे जा करके हर चीज से हटकर जंगल में बैठ जाते हैं, क्या उनको मोह नहीं रहता? आप सोचिए, बाबा ने कहा हुआ है कि 3 वर्ष की आयु के लगभग से लेकर अब तक हर आत्मा को अपनी यादें रहती हैं। अगर वो भूलना भी चाहे तो नहीं भूलती हैं। और सन्यासी जंगल में जाके बैठ जाएं, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, 2 घंटे के लिए अपना कमरा बंद करके कुंडा लगा के बैठ जाओ, किसी को अंदर नहीं आने दो, बाहर लिख दो अंदर आना सख्त मना है, फिर देखो आपको यादें सब खत्म हो जाएंगी, परमात्मा याद रहेगा या और यादें आनी शुरू हो जाएंगी जोर जोर से। हैं? अभी आपको कह दें कि रात को भोजन नहीं मिलेगा तो सबसे पहली याद किसकी आएगी? और बातें भूल जाएंगे, रेलवे रिजर्वेशन भूल जाएंगे, भोजन 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 भोजन, हो सकता है भोजन की वस्तुएं भी सामने आनी शुरू हो जाए। तो जिस चीज को दूर किया जाए परंतु मन से दूर ना हो, उसकी तो और भी ज्यादा मोह की जंजीर साफ साफ दिखाई देती है, जैसे एक्सरे में बीमारी साफ साफ दिखाई देती है। इसलिए सन्यासी चीजों को हटाकर समझते हैं कि हम मोह से को जीत लेंगे। इसी जैसे कि अभी शिव जयंती है तो शिवरात्रि को रात कहते हैं, अंधेरा कहते हैं, तो कोई व्यक्ति अंधेरे में ठोकर खाए, एक चीज से ठोकर खाए, थोड़ा बच के चले फिर दूसरी चीज से ठोकर खाए, तो सोचे कि जिस चीज से ठोकर खाऊं उसको बाहर फेंक दूं तो बिल्कुल मैं ठीक ठाक चल सकूंगा। नहीं, सब चीजें भी फेंक देंगे तो भी अंधेरा अंधेरा ही है। एक रस्सी भी आ जाएगी अंधेरे में तो समझेंगे सांप आ गया, उछल के उछलेंगे। इसी प्रकार से ये तरीका नहीं है, बेचारों ने कोशिश की फेल हो गए। तो बाबा ने क्या कहा है कि बुद्धि से मोह को हटाना है, बुद्धि से अभिमान को हटाना है। अगर आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति ही ना आए जो आपके पता लगे कि इसके साथ मेरा मोह है, और आप उसको बुद्धि से हटाएं ना, कहें परिस्थिति ही ना आए तो मेरा मैं नष्टो मोह हो जाऊं, ये नहीं होना है। परिस्थिति आए, बल्कि जितना आप मोह को चैलेंज करेंगे उतनी ज्यादा जोर से आएगी। क्या आएगी? ये मेरा शरीर, अरे ये तो बाबा ने कहा है। अब देखिए परमात्मा के शब्दों को माया कैसे घुमाती है। ये तो बाबा ने कहा है, ये तुम्हारा अंतिम शरीर क्या है, बहुत अमूल्य है, हीरे तुल्य है, ये तो इसी से तुम्हारी सारी कमाई है, इसलिए क्या करो, आराम से सो जाओ। इसको आराम देना बहुत जरूरी है, अमृत वेले तो खास तौर पे सो जाओ। अब देखो बाबा ने दो बातें कही हैं, एक बात सुन लिया, दूसरा बात अपने कमी के कारण उसको टाल दिया। जैसे बाबा कहते हैं ना, दो बातों में से आधी मान लेते हैं, ना दुख दो मान लिया। हाँ सच्ची बात है, किसी को दुख क्यों दे, परंतु जो दूसरा हिस्सा है ना दुख लो, वो नहीं माना। तो क्या हुआ, दुख लेते रहे, सहन करते रहे, किसी लिमिट में आके जब सहनशीलता का बांध टूट गया तो फिर दोष देने लगे, अरे ये आत्मा ऐसी है, इसने मेरी जिंदगी को बिल्कुल नरक बना दिया है, बाकी सब आत्माएं अच्छी हैं, ये जो मेरे साथ रहती है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसने तो मेरे को चारों तरफ से घेर रखा है, बाबा का ज्ञान भी काम नहीं करता, मैं क्या करूं। अभी है क्या कि यथाशक्ति है, सर्वशक्ति नहीं है। तो एक बात को देख रहे हैं, दूसरी को नहीं देख रहे। आपके आगे परिस्थिति आई, परिस्थिति आएगी, अगर परिस्थिति ही नहीं आएगी तो आप उसको पार कैसे करेंगे, और अगर पार नहीं करेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा मेरे में कितनी शक्ति आई। तो पहलवान क्या करते हैं, पहले छोटा पहलवान छोटे पहलवान से कश्ती करता है, दो बारी गिरता है, दो बारी जीतता है, फिर जरा हिम्मत करके फिर बड़े से करता है, करते 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 चैंपियन बनता है। जब चैंपियन बन जाता है तो चैलेंज करता है, आओ किसी ने आना है तो आओ। इसीलिए अश्वमेध की मिसाल मशहूर है कि पुराने वक्त के राजा, कहावत कहानी है, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए घोड़ा दौड़ाते थे कि हमारा घोड़ा दौड़ेगा, किसी की हिम्मत है तो घोड़े को रोक लो, अगर कोई रोकेगा उसको हम युद्ध करके जीतेंगे, और अगर हमारा घोड़ा सारा विश्व घूम के वापस आ गया तो हमारा चक्रवर्ती राज हो गया, ऐसा वो समझते हैं। लेकिन कौन सा घोड़ा था, क्या ये घोड़ा था जो नकी लेख के इर्द गिर्द घुमाते हैं वो है, या कोई शरीर रूपी रथ के अंदर बैठा हुआ कोई मन रूपी घोड़ा है, और मन रूपी घोड़ा भी आप जानते हैं हमारे योग का चित्र लगा हुआ है पांच घोड़े वाला, है ना, तो पांच इंद्रियों रूपी उसको जो मन उनके थ्रू क्रॉस करता है उससे परे करके उसको पवन पुत्र हवा की तरह चलने वाला आसमान में उड़ने वाला घोड़ा बनाएंगे, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तो तब जाके हमारी उड़ती कला होगी। अभी मुरली में आया था कि एक होता है स्टॉप कर करके चलना, एक होता है नॉन स्टॉप चलना। तो नॉन स्टॉप कौन चल सकता है, वही जो अश्वमेध रेस में भागने वाला है। अगर धरती पर आप चलेंगे तो कहीं लाल बत्ती आ जाएगी, कहीं ट्रैफिक आ जाएगा, कहीं आगे से कोई आ जाएगा, कहीं आगे आके घोड़ा खड़ा हो जाएगा, नहीं चल सकते। अच्छा, अगर आप आसमान में उड़ने लगे पर आपको रुकने की आदत हो, हैं, हवाई जहाज अगर रास्ते में रुकने की इच्छा रखता हो तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा। कहते हैं एक बार एक ट्रेन माउंट आबू आ रही थी, उसके दो इंजन होते हैं माउंट आबू की ट्रेन के, तो रास्ते में जयपुर के बाद एक इंजन फेल हो गया। तो आजकल ट्रेन में अनाउंसमेंट करते हैं, उसने कहा बड़ा खेद है एक इंजन फेल हो गया है, अब हमारी ट्रेन 3 घंटे लेट पहुंचेगी, क्योंकि एक ही इंजन उसको घसीटेगा। जैसे हम कभी कभी एक प्रकार की सेवा करते हैं, कर्म ना करते हैं तो कर्म ना ही करते हैं, वाचा करते हैं तो वाचा ही करते हैं, या खाली बैठ जाते आज मनसा सेवा करेंगे, तो एक इंजन से गाड़ी स्लो चलती है। बेचारे को चलाने लगे, आगे जाके वो भी फेल हो गया, इतना घसीट नहीं सका। फिर उसने कहा, फिर अनाउंस किया, ओहो अभी तो दूसरा इंजन भी फेल हो गया है, बहुत खेद है 8 घंटे लगेंगे, बड़े अफसोस की बात है 8 घंटे लगेंगे, दूसरा इंजन आएंगे तो गाड़ी चलेगी, सवारियां परेशान। फिर बोला है, खुशी की बात भी है। वो क्या है? सब सवारियों के कान खड़े हो गए कि खुशी की बात भी है। तो बोला, शुक्र करो कि आप हवाई जहाज में सफर नहीं कर रहे थे, अगर हवाई जहाज में जा रहे होते और दोनों इंजन फेल हो जाते तो वेट करने का सवाल नहीं है, फिर जाने का सवाल पैदा हो जाता। इसी प्रकार से उड़ती कला में चलने से पहले हमें ये देखना है कि हमें रुकने की आदत तो नहीं, धक्का लगा के तो नहीं चलते, किसी ने धक्का लगा दिया चल पड़े फिर रुक गए, फिर धक्का लगा दिया चल पड़े फिर रुक गए, तो क्या होगा? ऊपर गए वहां तो धक्का लगाने वाला भी नहीं है, तो सीधा नीचे आ जाएंगे। इसलिए पहले ये बाबा अभ्यास कराते हैं कि हमें ये अभ्यास करना आए कि हम रुकने से बचें। तो धक्का लगाना मैंने किसी चीज का आधार लेना, अच्छा लगता है आधार लेना। कोई बीमार होता है तो बीमार बेचारे को कोई ना कोई अटेंड करने वाला चाहिए, बहुत ज्यादा बीमार होता है तो 3-4 अटेंड करने वाले भी चाहिए, एक दवाई खिलाने वाला, एक नब्ज देखने वाला, एक भागकर डॉक्टर को ला सकने वाला, तरह तरह के। तो इसी प्रकार से हमको ये भी देखना है कि हमारे आधार कितने हैं। हम ज्ञान में आ गए, बहुत अच्छा, बस इसका आधार, उसका आधार, साधनों का आधार और चीजों का आधार, अच्छे अच्छे ड्रेस होने चाहिए, 10 वस्त्रों की जोड़ी होनी चाहिए, 4 जूतों के वो होने चाहिए, दूसरे को देखा ये इसके पास कार है, मेरे पास कार होनी चाहिए, शायद कार से ज्यादा योग लगता होगा कार में बैठने से, मुझे तो पता नहीं। अच्छा, इसी प्रकार से तरह तरह की चीजें 2 आंखों से देखने वाली, फिर अपने शरीर को देखेंगे अच्छी तरह, इसका खातर बातर करो, है बलि का बकरा, लेकिन कहेंगे हाँ बलि के बकरे भी को तो हरी घास खिलाते हैं, चलो बलि तो बाद में चढ़ेंगे, पहले घास तो खिला लो। इस प्रकार से अपने को धोखा देकर ये शरीर, आप सोचो ये भी हमें कर्म के हिसाब से मिला हुआ है, ये 84वां शरीर है, कोई कर्म संबंध के हिसाब से मिला हुआ नहीं है पहला शरीर, ये कर्म बंधन के हिसाब से मिला हुआ है। हर एक अपने जीवन से देख सकते हैं, इस शरीर ने आपको सुख भी दिया है, क्योंकि वास्तव में तो शरीर सुख देने के लिए ही है, लेकिन दुख भी दिया है। आज हम अच्छी तरह बैठे हैं, कल हमें लोग ग्लोबल हॉस्पिटल में देखने आ रहे होंगे, भाई साहब क्या हुआ, हैं? पता थोड़ी लगता है। अच्छा, इस वास्ते ये भी हमें कर्म बंधन के हिसाब से मिला हुआ है, तो हमें देखना चाहिए कि कर्म बंधन से मिली हुई, हिसाब से मिली हुई चीज को कोशिश करके हम ऐसा यूज करें जो हमारा कर्म बंधन बढ़े नहीं। तो आधार लेने का मतलब क्या है कि किसी से हम मदद लेते हैं, जिससे हम मदद लेते हैं वो फ्री नहीं होती, कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच इन दी वर्ल्ड, कोई चीज दुनिया में फ्री नहीं होती। अगर आपको कोई बिल्कुल फ्री में कुछ देता है तो होशियार रहना चाहिए, इसका कोई मतलब है, कल देखना क्या करेगा। इसी प्रकार से अगर आप आधार लेंगे तो आधार की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, समय भी जाएगा उसके ऊपर, अटेंशन भी जाना पड़ेगा। आज आप किसी को, कोई आपको बीमारी में अटेंड करता है, कल वो बीमार होगा, आपको भी अटेंड करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं निराधार रहो और मेरा आधार रखो। कहते हैं जिसका शिव बाबा दूसरा नहीं कोई, और जिसके दूसरे कोई उससे शिव बाबा दूर, है ना। बाबा कहते हैं या तो मुझे साथी बना लो तो दुनिया साखी, दुनिया से साखी रहो, या दुनिया को साथी बना लो तो मैं साखी रहूंगा। भगवान होते हुए भी आपको मदद नहीं कर सकता क्योंकि आप दूसरों से मांग रहे हैं। भगत की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा हनुमान जी आ जाओ, फिर उसको फेथ नहीं था हनुमान देर से आएगा, बोला अच्छा राम जी आ जाओ, फिर थोड़ा बार सोचा कृष्ण जी आ जाओ, फिर बेचारा दुखी हो गया, कहता आप आए नहीं। उसने कहा मैंने तैयारी की तो तुमने मेरा नाम छोड़ दिया, दूसरे का पकड़ लिया। इसी प्रकार से आप सोचिए कि सबसे पक्का आधार अपने अपने फायदे के लिए सोच लीजिए, अपने मतलब के लिए सोच लीजिए, सबसे पक्का आधार किसका है जो आपको हर जगह मदद कर सकता है। मेरे रिश्तेदार, मैं बीमार हो जाऊं, मुझे बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करा सकते हैं, एयर कंडीशन कमरा लेकर दे सकते हैं, डॉक्टर को ज्यादा फीस दे सकते हैं, इस भाई का ज्यादा ध्यान रखना, लेकिन तकलीफ तो मुझे उठानी पड़ रही है ना, उस तकलीफ में तो वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस तकलीफ में भी आपको कौन सहारा दे सकता बाबा। मेरा रिश्तेदार लंदन में रहता है, मुझे यहां जरूरत है, वो चाहता भी है मदद करूं लेकिन नहीं कर सकता। अभी लड़ाई हो जाती है, जब उधर के उधर लटक जाते हैं, इधर के इधर लटक जाते हैं, फोन कर करके पूछते हैं भाई जो ऐसा हुआ उसमें मेरा रिश्तेदार तो नहीं था, दिल दुख दुख करता है। तो इस लौकिक आधारों का कहां तक क्या फायदा है और कहां तक फायदा है। तब बाबा ने कहा है कि बच्चे इतने जन्म, आधे जन्म तो आपको ये लौकिक चीजें सुख देने वाली थी, क्योंकि हमारे पीछे कर्म की प्रारब्ध थी, और वो कर्म की प्रारब्ध शक्ति जो थी, आत्माएं सब, चाहे वो राजा थे, महाराजा थे, प्रजा थे, दास दासी थे, लेकिन सब आत्माएं अपनी अपनी स्थिति के अनुसार संपन्न थे। और उनकी संपन्नता के आधार से क्या होता था, देखो एक प्रजा है सतयुग की फर्स्ट जन्म की, एक महाराजन है, फर्क तो है, महाराजन महाराजन ही है, प्रजा प्रजा ही है, परंतु प्रकृति का सुख, अच्छे अच्छे नजारे, अच्छे अच्छे झरने, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे पंछी, प्रकृति का सुख महाराजा को भी था तो प्रजा को भी था, लास्ट प्रजा को भी था कि नहीं था। अगर वहां कोई फल खाता था तो इतना मीठा था, राजा का फल भी मीठा था, प्रजा का फल भी मीठा था। ये हो सकता है कि राजा ज्यादा फल उसके सामने रखे जाए, पर राजा ये तो जानता था कि खाने की कैपेसिटी तो उतनी है, उतना ही खाता था, थोड़ा थोड़ा खाता था, 36 प्रकार का खाता था। यहां चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे कोई है, ना उनको प्रकृति का सुख है, ना समाज का सुख है। अभी भारत के पूर्व राष्ट्रपति वेंकट रमन जी को गुड़गांव में जो हमारा स्थान है वहां आना था। अच्छा, राष्ट्रपति हैं, पुलिस की आगे गाड़ी रहती है, रास्ते में भी पुलिस रहती है, फिर भी उनको आने में 1.25 घंटा लगा, क्योंकि और ट्रैफिक को थोड़ी रोक देंगे। अभी दिल्ली में कोई मिनिस्टर वगैरह, प्राइम मिनिस्टर जाता है तो ट्रैफिक रोक देते हैं, रोज लोग अंदर से बददुआ देते हैं, ये क्या है, हमें अस्पताल जाना था देखो रोक दिया, हमें स्टेशन जाना था। तो दिक्कत करके प्रजा को थोड़ा कोशिश करते हैं कि कुछ राजा का अधिकार रहे, परंतु फिर भी ना राजा को सुख है ना प्रजा को सुख है, क्योंकि राज तो रावण का है, कहां सांस कहां लेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट है चाहे प्राइम मिनिस्टर है, दिल्ली के हवा में ही सांस लेगा ना, या तो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके चलेगा कि मैं राष्ट्रपति हूं मेरे को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, वो भी मुसीबत है। यहां पर आप कोई चीज ले लो उसके साथ कीमत बंधी हुई है। आप एयर कंडीशनर ले आओ, बड़ा अच्छा है, कई लोगों के पास एयर कंडीशनर नहीं, वो सोचते हैं स्वर्ग में रहना है, कलयुग में स्वर्ग बना लो, एक एयर कंडीशनर ले आओ। अच्छा, पहले तो उसकी आपको कीमत देनी पड़े, फिर जब बिजली जाए तो एक जनरेटर लाना पड़े, फिर सारा ही फेल हो जाए तो एयर कंडीशनर वाला इतना दुखी होता है बगैर एयर कंडीशनर के, उसको नरक दिखाई देता है। कभी कभी ट्रेन में एयर कंडीशन फेल हो जाता है तो उनके प्राण निकल जाते हैं, वो अच्छा या नॉर्मल रहना अच्छा। फिर ट्रेन एयर कंडीशन है, उसमें तीन आदमी दमे वाले बैठे हुए हैं, तीन टीवी वाले बैठे हुए हैं, सारे दरवाजे बंद है, ठंडी सांस है, बहुत ठंडी हवा है, परंतु उसकी दमे की सारी बीमारी, उसकी तपेदिक की बीमारी, वो सब सबके अंदर जा रही है ना, है ठंडा हवा, क्या पसंद है। ऐसे सिनेमा जो देखते हैं बंद कर देते हैं। इस वास्ते अगर आप तीसरी आंख से देखोगे आपको लगेगा यहाँ नरक के सिवाय कुछ ही नहीं है, बिल्कुल ही। और जितना ज्यादा आकर्षण वाली चीज दिखती है उतना ज्यादा खतरा है और उतना ज्यादा नरक है। आपका किसी को धन दिख जाए आपके मरने का खतरा है, आपका किसी को कुछ दिख जाए वो लूटने का खतरा है। यहाँ तो ये हाल है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो जान बचाने नहीं जाते, घड़ियां उतारने जाते हैं, इसका कुछ ले लो। ऐसी दुनिया में हमें तो पता नहीं लगता मनुष्यों को क्या मिलता है। इस वास्ते बाबा ने ये एक विचित्र विश्वविद्यालय बनाया है। और बाबा कहता है इसमें वैसे सबको आने के लिए स्वागत है, सबको बुला बुला के कहा जाता आओ आओ बाबा से वर्षा ले लो, परंतु फिर भी बाबा कहता है ऐसा वंडर है, इतने भाग्यशाली कोई होंगे जिन्होंने कल पहले इस गहराई को जाना होगा, वही आकर के उसको पहचानेंगे और वो वर्षा लेंगे। और जरा सा बाबा के घर के अंदर आने के अधिकारी भी बन गए तो वो समझो स्वर्ग में जाने के अधिकारी बन गए, इतना शानदार ये बाबा का वर्षा है। कैसे? इसमें सबसे पहले हमें उस चीज का परिचय दिया जाता है जो सारे दुखों का कारण है। ठीक है, आपके ऊपर बहुत बोझ है, बहुत उधार है, बहुत पुराने संस्कारों का सब कुछ है, वो तो सबके ऊपर है। तो पहली हमको समझ ये दी जाती है कि हम जिस घड़ी हमें परिचय मिल जाता है उसके बाद हम अपना बोझ बढ़ा नहीं सकते, घटा सकते हैं, अगर हम ठीक तरह से उसको समझ करके चलें। अपना भी घटा सकते हैं, दूसरों का भी घटा सकते हैं, और बोझ को उठाने के लिए है ऐसी शक्ति मिलती है जो बोझ हल्का लगता है। कैसे? कभी आप कोई मोटर कार को धक्का लगाएं, उसका इंजन बंद हो, उसको धक्का लगाओ, कैसा लगेगा? भारी लगेगा। अच्छा, उसका इंजन ऑन कर दो और कुछ नहीं करो, उसके इंजन चालू नहीं है, सिर्फ ऑन कर दो तो उसको धक्का लगाओ, क्या होता है? हल्का हो जाता है। अच्छा, अपने को ही देख लो, अगर हमारे से आत्मा निकल जाए, हमको कोई उठाना हो किसी को, तो क्या होगा? हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु एक डेड बॉडी को, आज भारत में रस्म है ना, कंधा दे दे कर ले जाते हैं, तो कितना भी अच्छा रिश्तेदार होगा थोड़ी देर के बाद उसका कंधा थक जाएगा, सोचेगा दूसरा आके, दूसरा भाई लगाए अब। अच्छा, इतना भारी हो जाता है। और जब हम अंदर आत्मा है या आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आप शरीर को हल्का समझ के चलाते हो, उठ जाते हो, बैठ जाते हो, सांप निकल आए तो भाग भी जाते हो फटाफट। तो ये किसकी शक्ति से होता है? आत्मा की शक्ति से होता है। इसी प्रकार से अगर आप आत्मा का जरा सा भी परिचय रखेंगे तो आपको बोझ हल्का लगेगा, क्योंकि आत्मा बहुत पावरफुल है और पावरफुल इंजन है, वो तो औरों को भी ले साथ ले जा सकता है। तो पहला ज्ञान जो हमें बाबा ने यहां पर दिया और जिसके आधार से ही हम बाबा का परिचय ले सकते हैं, बाबा से वर्षा ले सकते हैं, बाबा से शक्ति ले सकते हैं, वह है आत्मा का ज्ञान। बहन जी भी आपको आत्मा के बारे में बता रहे थे अलफ। अब देखिए आत्मा के ज्ञान का पहला फायदा क्या है। पहला फायदा यह है कि आप संसारिक शक्तियों का आत्मिक शक्तियों से मुकाबला करते हैं। संसारिक शक्तियां क्या हैं? धन की शक्ति, परिवार की शक्ति, स्वास्थ्य की शक्ति, बुद्धि की या पद की पोजीशन की शक्ति, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपने इन्फ्लुएंस होता है किसी का, उसकी शक्ति। बस ये धन की बाहर की शक्तियां हैं। मौके के ऊपर आपका धन काम नहीं आ सकता, धन आपकी आयु नहीं बढ़ा सकता। आपको सब पता है कि धन कई कई जगह फेल हो जाता है। धन है लेकिन काम नहीं आ सकता, ये शरीर है लेकिन काम नहीं आ सकता, परिवार है काम नहीं आ सकता, पद है, कोई भी चीज काम नहीं आ सकती, तो इसकी लिमिट है। अच्छा है भी तो शरीर से संबंधित है। हमारा शरीर धीरे 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 पुराना तो हो ही रहा है। वही व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है, सब कुछ पड़ा है, वो बेचारे के काम नहीं आ सकता है, तो इसकी लिमिट हमें मालूम है। बीच में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। अच्छा अब जो आत्मा की शक्ति है वो क्या है कि आत्मा को कुछ नहीं, बाहर की कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन आत्मा अंदर से प्रेम पैदा कर सकती है। जिस प्रेम को लोग ढूंढते हैं, जिस प्रेम के लिए खर्चा करते हैं, दूसरे का फ्रेंडशिप करते हैं, उसका टाइम देते हैं, जिस प्रेम के लिए कई कुछ करते हैं, वो अंदर ही है। अच्छा सम्मान है, सम्मान के लिए व्यक्ति बड़ा बड़ा मकान बनाता है, महंगी महंगी चीजें रखता है, बड़ा मोटर खरीदता है, ये करता है कि मुझे लगे मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। आत्मा अपने स्व अभिमान में रहे, स्वमान में, तो उसको अंदर से इतना सम्मान रहता है। जैसे बाबा कहते हैं कन्या जो होती है, कन्या को कितना सम्मान रहता है, उसको किसी से डरती नहीं है, सब उसके पांव को हाथ लगाते हैं, पवित्रता का सम्मान रहता है। इसी प्रकार से जो कुछ चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, आत्मा के अंदर ही है बल्कि हमने शरीर के अंदर आत्मा को कैद करके उसको, जैसे किसी अच्छे व्यक्ति को भी आप कैद कर दो तो क्या होगा, वो कैद के अंदर बेचारा मजबूर हो जाएगा। जैसे आजकल गाय भैंस को घुमाते नहीं है, उसको रस्सी से बांध देते हैं शहर के अंदर अपने एक जगह, तो उसकी बेचारे का सारा कुछ दूसरी तरह का हो जाता है। तोते को पिंजरे में डाल देते हैं, दूसरी तरह का हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मा के अंदर इसके बॉडी में आ जाती है तो फिर क्या होता है, प्रेम की जगह, प्रेम तो उसका संस्कार है लेकिन किसी किसी से खास प्रेम और बाकियों से कम प्रेम, या फिर नफरत पैदा हो जाती, डबल हो जाता है दो इससे। जैसे रस्सी से बंधी हुई भैंस के पास जाओ तो सींग मारती है, पैर हिलाती है, क्यों, वो परेशान है। इसी प्रकार से आत्मा परेशान है। तो जितनी चीजें हम बाहर से लेनी चाहते हैं वो सब आत्मा के अंदर ही है, आत्मा का ही स्वरूप है। तो अपनी चीज बाहर एक्सपोर्ट करने की बजाय हम इतने गरीब हो गए हैं कि इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ये मुझे प्रेम दे जाए, ये मुझे स्नेह दे जाए, ये मुझे शक्ति दे जाए, तो बाबा ने हमको रियलाइज कराया ऐसा नहीं है। फिर सबसे बड़ा दुनिया में चीज खराब है भय, भय। तो बाबा क्या करता है, भय व्यक्ति को हिम्मतहीन बना देता है। हम यहां तक हिम्मतहीन बन जाते हैं कि परमात्मा से भी मदद नहीं ले सकते, कमजोर हो जाते हैं, भय बहुत कमजोर करता है। कबूतर को क्या होता है, कबूतर के आगे जब बिल्ली आती है तो कबूतर क्या करता है, भय से कांपता है, आंखें बंद कर लेता है। ये बंदर जो होते हैं ना पेड़ों पर, जब नीचे आके शेर जोर से बोलता है वो सारे नीचे गिर जाते हैं, अच्छा भय से, नहीं तो शेर तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। कबूतर अगर हिम्मत रखे तो उड़ सकता है, उसके पर है, जाके दीवार पर बैठ जाए बिल्ली क्या करेगी, लेकिन भय से डर जाता है। इसी प्रकार से जितने आत्मा के ज्ञान के बिना लोग हैं सबको मृत्यु का भय है। आप देख लो क्या भय है उनको, मैं मर जाऊंगा, जितना बड़ा धन इकट्ठा करेगा हाय मैं मर जाऊंगा, अब क्या होगा, जितना बड़ा आदमी मरने वाला होगा उतने डॉक्टर ज्यादा बुलाएगा, लंदन से बुलाएगा, अमेरिका से, हाय मैं मर जाऊंगा, مرنا تو ہے ہی، لیکن پھر بھی یہ میرا سب جائے گا، تو یہ بھے کیوں ہے؟ کہ اس آتما کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارے سنسکار تو آتما میں ہیں، جو کچھ تمہیں یہاں ملا ہے وہ تم یہاں ساتھ لائے تھے کیا؟ جب جنم ہوا ہمارا ہم کو کچھ ملا، شریر ملا، پہلے تو ہم نے پیدا کیا شریر کو، اچھا بھلا شریر مل گیا، آنکھیں مل گئیں، یہ کیمرا مل گیا، یہ سنگیت کا سادھن مل گیا، خوشبو کی چیز مل گئی، سواد لینے کی مل گئی، چلنے کی مل گئی، یہ سب ہم نے لیا ہے کیا؟ اپنے کرم سے مل گیا۔ اچھا ابھی چھوڑیں گے، پھر آتما ہے تو اس کو ویسا جیسا ہوگا ویسا مل جائے گا، جیسا بیج لگاؤ گے ویسا آم پیدا ہو جائے گا، کھٹا لگاؤ گے کھٹا پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم مرتے ہی نہیں، یہ گیان آتما کے گیان سے شروع ہوتا ہے، الف سے، کہ ہم مرتے ہی نہیں۔ شریر مانو گے تو ہم مرتے ہیں، آتما مانو گے تو ہم امر ہیں، یہ گیتا کا لیسن ہے۔ اب بتاؤ بابا کے جتنے نئے بچے آتے ہیں تو پہلے پہلے وہ ان کو کہتے ہیں بھئی یہ تو بڑا ونڈر ہے، ہم بھکتی کرتے رہے، ہے بھگوان ہم شدھ ہو جائیں گے، ہم دان کریں، یگ کریں، پنیہ کریں، تیرتھ سنان کریں، مالا پھیریں، پنڈت جی کو بھوجن کرائیں تو ہم شدھ ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ شدھ ہوں گے تو بھگوان ملے گا، ان کو معلوم ہے پرماتما بہت پوتر ہے، اس لیے ہمیں بھی پوتر ہو کے اس سے ملنا ہے۔ کسی اچھے ویکتی کے پاس جاؤ گے، اچھی ڈریس پہن کے جاؤ گے، یہ ہے بھکتی، پوتر ہو کے ملیں گے بھگوان سے۔ اب کیا ہے؟ نو نو نہ نو من تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی، کہ تم اپنے آپ پوتر ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی بیمار روگی 104 بخار، بولے میں اپنا بخار ٹھیک کر لوں پھر میں ڈاکٹر جی سے ملوں گا، کاہے کو ملے گا؟ تمہارا بخار ٹھیک ہی کیسے ہوگا؟ تم خود ہی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر جی کو کاہے ملے گا؟ ان کو معلوم ہی نہیں کہ پرماتما پتیت پاون ہے، ہے نا؟ ایک تو پرماتما پتیت پاون معلوم نہیں، تو خود کو ہی پتیت پاون ماننے لگ گئے ہیں، تو نہ پاون بنتے ہیں نہ پرماتما سے ملتے ہیں۔ ارے تم پاون خود ہی ہو جاؤ تو پرماتما سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، دیوتا پرماتما سے تھوڑی ملتے ہیں، الٹا ہو گیا کہ نہیں؟ کہ پہلے ہم پاون بنے پھر بھگوان سے ملے۔ تو اس لیے ہم نے بہت جنموں سے جو محنت کے رستے اپنائے ہوئے ہیں وہ سب ہمیں تھکا بھی دیتے ہیں اور پراپتی بھی نہیں کراتے۔ کوئی کہے ایک مکان بنانا ہے، اوپر سے نیچے کو بنانا شروع کرو تو محنت لگے گی۔ تو اس لیے بابا ہم کو بہت سہج طریقہ بتاتا ہے کہ آتما ماننے سے اور باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ پہلی بات، اپنے کو شریر ماننا، میں نے اپنے کو بھوت ماننا یا مرتیو لوک کا مردہ ماننا، چلتا پھرتا مردہ، کیونکہ شریر کاہے کا بنا ہوا ہے؟ یہ شریر کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ بھوتوں کا بنا ہوا ہے، پانچ تتوؤں کا بنا ہوا ہے۔ تو شریر ماننا میں نے مردہ ماننا، پھر وہ مردہ بھی پرانا ہوتا جاتا ہے، اس لیے پرانے مردے کو نیا کفن ڈال دو رہے گا تو مردہ ہی ہے، بوڑھا گھوڑا لال لگام جیسے کہتے ہیں۔ اس شریر کو، کلجگی شریر کو سجانا، میں نے مردے کو سجانا، اس میں تو پتہ نہیں کب کیا سے کوئی حساب کتاب نکل آئے۔ یہ ہمیں ملا ہوا ایک رتھ ہے، ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہے، اس کو چلاتے جانا ہے، لیکن گاڑی ملتی ہے منزل پر جانے کے لیے، نہ کہ گاڑی گاڑی کے لیے ملتی ہے۔ ایک تو بابا یہ بتاتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ جتنے جڑنے والے ٹریفک باقی چل رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ اپنا اپنی اس کی منزل ہے، ہمیں ان کے سہیوگ دینا ہے، سہیوگ لینا ہے، لیکن موہ میں آ کر نہیں دینا ہے، اس کا بھی موہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ نے شریر کا بھی موہ رکھ لیا تو آپ کو دکھ تو ہے ہی ہے، موہ کا دوسرا روپ دکھ ہوتا ہے، جو چیز آپ اپنی سمجھیں گے وہ آپ کو دکھ دے گی۔ مان لو آپ کسی ہوٹل میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ والے کمرے میں کوئی دوسرا ویکتی رہتا ہے اور وہ اس کی دیوار میں کیل ٹھوکتا ہے ہوٹل کی دیوار میں، تو آپ کو تکلیف تو ہوگی کہ بھئی یہ آواز کر رہا ہے، لیکن آپ کو درد نہیں ہوگا کہ کیل ٹھوک رہا ہے، ہوٹل کا ہوٹل میں ٹھوک رہا ہے، میرے گھر میں تھوڑی ٹھوک رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں ساتھ والے کمرے میں کوئی کرایہ دار رکھ دیا اور اس نے اس میں کیل ٹھوکا تو آپ کو کیا لگے گا؟ وہ یہاں ٹھوک رہا ہے، میرے کو ٹھوک رہا ہے، کیونکہ میرا گھر ہے۔ تو میرا کہنے سے کتنی پرابلم ہے، تو میرا کہنے سے ہی میں، اور خاص طور پہ شریر کو میرا کہنا، یہ تو بہت خطرناک ہے کہ میں یہ نہیں ہوں، तब बाबा कहते हैं दूसरा, तो बाबा ने फिर क्या युक्ति बनाई है, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा काका, मेरा बिजनेस, इसकी बजाय उसको बड़ा कर दिया बाबा ने। अगर जहर भी होगी, एक बूंद जहर एक चमचा में डालेंगे तो जहर ही बहुत खतरनाक है, अगर एक बूंद जहर को एक बाल्टी पानी में डाल दो फिर एक गिलास भी पी लो तो ज्यादा असर नहीं करेगी। तो बाबा ने हद की पॉइजन को बेहद की कर दिया, आपको बहुत बड़ा परिवार दे दिया, वो मेरा, लेकिन अब छोटा मेरा हो गया, ये मेरा घर है। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को छोटा करना हो तो उससे बड़ी कर लो, एक लकीर को छोटा करना हो बिना टच किए तो बड़ी लकीर खींच दो आप ही छोटी हो जाएगी है। मैं बड़ा भाई, एक छोटा भाई पैदा हो गया तो मैं वो आप ही छोटा हो गया। इसी प्रकार से बाबा ने कहा ये शरीर के भान से मेरे मामा चाचा मेरे भाई हैं, चलो आत्मा के आधार से ये सब परिवार है। अभी हम किस आधार से यहां बैठे हैं, भाई बहन के आधार से बैठे हैं, आत्मा आत्मा के आधार से बैठे हैं, तो आत्मा का ज्ञान कितना अच्छा है। आत्मा कहते ही बीके का परिवार तो आपका हो ही गया, और ज्ञान की रीति से सारी दुनिया की आत्मा आपका परिवार हो गया, तो क्या हुआ, इतना बड़ा होने से वो छोटा थोड़ा लगने लग गया, तो उसका मोह कम कर दिया। इसी तरह से मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, तो बाबा ने ये यज्ञ क्यों रचा, भक्ति मार्ग में अपनी अपनी तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मेरी मुक्ति हो जाए, वो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें भी मैं रहता है। बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रच दिया कि आप, आपका वो भी घर है, आपके इतने घर हैं, ये डायमंड हाउस भी आपका ही है। तो बाबा कहता आप बहुत बड़ा संगठित परिवार हो, यहाँ तो ये है जो बहन भाई यहाँ आते हैं, क्लास में नहीं भी आते, बाहर जाके देखो घूमते हुए एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे हैं, जैसे कोई माल रोड में सैर करता है ना, ठंडी ठंडी आत्माओं की फीलिंग आ रही है, वाह 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 वाह, हवा में ही ऐसा ताकत आ जाती, क्यों, बेहद है। अब बाबा कहता सोचो, फिर मैंने और भी बता दिया कि है तो आत्मा इतनी सी, इसमें पार्ट कितना है, इसमें पार्ट कितना है, इस शरीर का पार्ट तो आपको पता है, ज्यादा से ज्यादा 80 बरस 100 बरस, उससे कम एक घड़ी, लेकिन उसका पार्ट कितना है, उसका पार्ट तो लगातार खत्म ही नहीं होता, और 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पार्ट तो उसमें है ही है, और ये सबसे घटिया पार्ट है, इसके आगे तो अच्छा ही अच्छा पार्ट है। किसी जेल वाले को पता लगे मेरी जेल खत्म होने वाली है, अब मैं मौज करूंगा, तो पहले खुश हो जाता है, बच्चे को स्कूल में छुट्टी होने से एक घंटा पहले ही छुट्टी का ख्याल आना शुरू हो जाता है। तो अभी तो हमें और भी फायदा है, ये भी आत्मा के ज्ञान का फायदा है। फिर बाबा कहते हैं इसमें जो मर्जी भर लो, मेरे से शक्ति लेकर जितने मर्जी संस्कार भर लो। इसीलिए बाबा स्मृति के ऊपर जोर देता है कि आपके पास अपने घर में 20 प्रकार के ड्रेस हैं, एक बहुत बढ़िया ड्रेस है, चार बहुत बढ़िया ड्रेस है, 3-4 घटिया ड्रेस भी हैं। इसी तरह से आपके पास जूते हैं, एक बहुत बढ़िया जूता है, एक घटिया भी है। अब कईयों को आदत होती है, वो बढ़िया को रख देते हैं, देखते रहते हैं, हाँ है, बैंक में पैसा है, और घटिया को पहनते रहते हैं। जब जाओगे ना बंगाल में जाओगे तो अंदर बनियान पहन के बैठे रहते, कोई कुंडा खटखटाएगा तो कुर्ता लगा के आएंगे। अच्छा, अभी घटिया ही घटिया, घटिया ही घटिया पहनते रहते हैं, समझते हैं वो पड़ा है, उनको प्रयोग करना नहीं आता। इस दुनिया के अंदर हमें समय मिला हुआ है, जैसे एक एक्टर होता है, एक्टर को स्टेज भी मिलता है, समय भी मिलता है, और पार्ट भी मिलता है। तो हमें स्टेज भी मिल गया, समय भी मिल गया, पार्ट भी मिल गया। अब हमने समय का ध्यान ना रख के अपनी सारी अच्छी अच्छी ड्रेस को वहां टांग दिया, और हमारा समय पूरा हो गया तो ड्रेस तो कोई और पहनेगा। इसी प्रकार से बाबा कहता है योग का प्रयोग तो करना ही है, परंतु अपने समय का, अभी मुरली में क्या आया था, सफल करो सफल बनो, अपने समय का, अपने साधनों का, और सबसे बढ़िया अपने संकल्पों का। अब आपकी मर्जी है, आपके अंदर 84 जन्मों के संस्कार हैं, 84 जन्मों के संस्कारों के संकल्प भी हैं, घटिया से घटिया भी हैं इस जन्म के, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, इसने, और सतयुग के भी हैं, एंड ठंडे ठार बढ़िया संकल्प। अब आपकी मर्जी है, उसको यूज करो, इसको छोड़ दो। अगर आप आज से फैसला कर लो पहले मैंने अपनी बढ़िया ड्रेस पहननी है तो क्या होगा, आपको खुशी भी आएगी और घटिया ड्रेस प्रयोग में नहीं होगी, धीरे धीरे आप सोचेंगे इसको फेंको, ये इतनी शानदार थी मैंने तो इसको यूज करके नहीं देखा, ये मैंने समझा किसी किसी दिन शिवरात्रि के दिन पहननी है, लेकिन ये तो रोज ही शिवरात्रि मनानी है तो रोज ही पहनो। इसी प्रकार से हम अपने अच्छे संस्कारों को यूज करना शुरू कर दें, हैं तो सही हमारे अंदर, तब अंत वाले संस्कार क्यों हम प्रयोग में लाते हैं, फटी हुई जूती हम लगाएं सतयुग के संस्कार। तो इसलिए सिर्फ मैं आत्मा हूं कहना काफी नहीं है, कहने का भाव यह है मैं देह नहीं हूं ये तो सब जानते हैं, मैं आत्मा हूं कहना भी काफी नहीं है, क्यों, विकार किसमें है, शरीर में है क्या, विकार किसमें है, आत्मा में। अगर मैंने कहा मैं आत्मा हूं तो क्या फायदा हुआ, वो भी विकारी है, कलजुगी है। इस वास्ते मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं संगम युगी आत्मा हूं, पावरफुल, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, उसका साथी, वो मेरा कंपेनियन है, वो आत्मा हूं, उसकी उंगली मैंने दी हुई है, मैं इधर उधर भागने की कोशिश भी करूंगा उसकी उंगली नहीं छोड़ूंगा, वो आप ही मुझे पकड़ लेगा, और उसके अंदर इतनी शक्ति है मुझे हर मुसीबत से पार कर सकता है। अब किसी का राजा से कनेक्शन हो जाए उसको कितना नशा रहता है, अरे राजा मेरा राजा साथ है, ये तो भगवान है। सतयुगी आत्मा भी नहीं, सतयुगी आत्मा में इतनी ताकत नहीं है, आपने कभी सोचा, सतयुगी आत्मा सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न उसका टाइटल नहीं है, कि है उसका यथाशक्ति भी टाइटल नहीं है, सतयुगी आत्मा में शक्ति नाम है ही नहीं, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म, हो गई छुट्टी, क्या शक्ति है उसमें, कोई नहीं है, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं सकती, नीचे ही जाना है उसने, अंदर से तो हम जानते हैं ना कि आज उसके पास अरबों रुपया है कल कम हो जाएगा, आज श्री कृष्ण जी हैं नारायण बनते बनते भी पूजा घट जाती है, इसलिए जो यहाँ की ताकत है वो हमारी अपनी है क्योंकि भगवान साथ है। इस वास्ते ये जो शक्ति है ये हम शक्तिशाली आत्मा है, अपने में कम भी हो तो बाप साथ है, इस वक्त हम परम शक्तिशाली आत्मा है, अगर हम ये याद रखते हैं तो अपनी शक्ति का यूज नहीं करेंगे। बैटरी का यूज जब किया जाता है जब बिजली फेल हो जाए, अभी तो बिजली का पावर हाउस का कनेक्शन हमारे पास है, अपनी बैटरी को भर के संभाल के रखें, सतयुग से लेकर कलयुग तक ये बैटरी ही चलनी है, अभी क्या जरूरत है बैटरी चलाने की। इस वास्ते इस समय हमें मौका है, परमात्मा कहता है मैं आपका मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, आपकी सारी मदद करूंगा, सिर्फ ये देह और देह की चीजें और इस संसारिक साधनों के आधार पर साधना करना ये बेसिकली गलत है, क्योंकि साधना के आधार से साधन मिलते हैं, हमें ये शरीर भी अपने कर्मों के हिसाब से मिला है। तो सोचिए अगर आपको मोटर कार मिला या कुछ मिला है, अच्छी चीज मिली है, सोना चांदी कुछ मिला है, तो अपनी आत्मा के संस्कार के आधार से मिला है, तो हम समझे कि सोना मिल जाएगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, जैसे लोग कहते हैं सितारे हैं, ये सितारों से मेरे ग्रह बनते हैं, जाके कई काम करते हैं कि 10-10 अंगूठियां पहनते हैं, ये कहते हैं राहु की दशा हटा दो इसकी कर लो, बाबा कहता है ये अल्पकालिक है, अरे आपसे सितारे बनते हैं। इस वास्ते अपनी किस्मत को मुट्ठी में करने के लिए और ताकत लाने के लिए अपने आप को संगम योगी, परम सर्वशक्तिवान की संतान, शक्तिशाली आत्मा, क्योंकि इस वक्त है ही संगम युग, चढ़ती कला है, इस समय हम नीचे जा ही नहीं सकते, कोई भी ब्राह्मण नीचे जा नहीं सकता, क्यों, दुनिया को तो पता नहीं सूर्य निकल रहा है, हमारे लिए तो निकला हुआ है, तो सूर्य के सामने सितारा होगा तो सूर्य की चमक सितारे में आ जाएगी, इसलिए बाबा कहता है कि सूर्य के सामने रहो, सूर्य के समीप रहो, सूर्य के समान रहो, और किसी का आधार नहीं लो, अगर आप और किसी का आधार लेंगे तो फिर सूर्य के आधार, कमरा बंद कर लो, सूर्य बाहर निकला हुआ, बत्ती जगानी पड़ेगी आपको, इसलिए अपने आप को बेहद में रखो। तब बाबा कहता है कि इस समय हमें सर्वशक्ति संपन्न एक सेकंड में आप बन सकते हैं, उसको कायम भी रख सकते हैं, केवल एक शब्द है स्मृति, हमारी सारी शक्ति और हमारी सारी कमजोरी का आधार हमारी स्मृति है, और स्मृति तो आपकी चीज है, आपने खुद ही स्मृति लानी है, और कुछ भी नहीं, ये शरीर में ताकत हो ना हो। बाबा कहते हैं स्मृति, शिव बाबा को याद करके आप माउंट आबू चढ़ जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, थकेंगे ही नहीं। कोई समस्या आ जाए, शिव बाबा की स्मृति से सब ठीक हो जाएगी। तो ये स्मृति स्वरूप वो सिमरण करते हैं भक्ति में, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हनुमान हनुमान, ऐसे करते हैं। बाबा कहते हैं ये स्मृति है। तो स्मृति स्वरूप मैंने कौन सी स्मृति, सिर्फ मैं आत्मा की स्मृति नहीं, मैं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान की संतान संगम युगी शक्तिशाली आत्मा, फिर देखो आपके आगे अंधेरा नहीं आएगा, वरना फिर अपनी ताकत आ जाएगी यथाशक्ति। हाँ चाहता तो हूं, हो नहीं पा रहा, ये नहीं चाहता हूं, ये हो जाता है। कौन चाहता है मैं क्रोध करूं, आ जाता है। कौन चाहता है मैं अमृत वेले ना उठूं, लेकिन सो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो स्मृति भूली। अगर स्मृति आ जाए कि मेरी खाट में बहुत बड़ा सांप बैठा है, अमृत वेला क्या 3 बजे उठ के नीचे आ जाओगे, है ना? सोने का तो नाम ही नहीं लोगे, अभी भूचाल आना शुरू हो जाए तो नींद आएगी किसी को नहीं। लेकिन बाबा कहता है कि भय से स्मृति लाना ठीक नहीं है, स्नेह से। तो अति स्नेह, बहन जी आपको बता रही थी कि परमात्मा के साथ जुड़ने का, उसकी यात्रा करने का रॉकेट का पेट्रोल है स्नेह। क्यों? आपका मन कहाँ जाता है? जिधर आपका स्नेह है, देख लो, मजबूरी से मन जाएगा, वापस आ जाएगा। कोई कह दे आपके पेट में ट्यूमर है तो सुबह सीधा अस्पताल में जाएंगे, अगर वो कह दे ट्यूमर नहीं है तो दोबारा अस्पताल में नहीं जाएंगे। मजबूरी से बच्चा इम्तिहान के लिए भी पढ़ता है, वो मजबूरी का है। किसी की नकली इज्जत भी करनी पड़ती है मजबूरी से, भय भी फायदा कर दे। लेकिन असली जो ना हटने वाला स्नेह है, जो आप कोशिश भी करेंगे नहीं हटेगा, वो असली दिल का स्नेह होता। तो परमात्मा से हमको इतने फायदे हैं जो किसी से नहीं है, ये भी सोच लें। चलो वो हमें देता ही देता है, और जितने होंगे कुछ लेंगे। पुजारी से पूजा भी करवाओगे तो कुछ प्रसाद रख लेगा, बाबा तो खाता भी नहीं पीता भी नहीं, उसका शरीर भी नहीं है इस वास्ते, और देता ही है। तब बाबा कहता है कि आप तो मेरे समान बन जाओ, तो आप भी देना शुरू कर दो, मेरे से लेते जाओ दूसरे को देते जाओ। सबसे बढ़िया बिजनेस क्या होता है? इसमें अपना माल ना लगे, ना हिंग लगे, ना फटकड़ी है, रंग भी अच्छा है। तो ये ज्ञान का बिजनेस ऐसा है, आपको माल ऊपर से मिल रहा है, आपने कुछ अपने लिए रख के बाकी सप्लाई कर देना है, और आपके भाग्य बनता जाएगा। और क्या चाहिए? इसमें घाटा का तो सवाल ही नहीं, घाटा सिर्फ फायदे का घाटा है। बाबा कहते हैं एक बिंदी लगाओ 10 हो गया, 2 लगाओ 100 हो गया, 3 लगाओ, इस तरह हमारा बिजनेस है। कोई बड़ा बड़ा सेठ भी इतना बिजनेस नहीं कर सकता। फिर हम क्या करते हैं, 4 बिंदी लगा के क्या कहते हैं, 10,000 हो गया बस। अरे आप तो इतनी लगा सकते हो, तो फायदे का नुकसान है, अर्थात जितना लेना चाहिए उतना नहीं लेते, और तो कुछ नहीं ना। आप तो लेके इन्वेस्ट कर सकते हो, और जिसमें इन्वेस्ट करोगे वो भी वहां से लेना शुरू कर देगा, तो उसमें भी आपका शेयर हो जाएगा। ये जो हमारी दादियां हैं शुरू से हैं, इनकी इतनी कमाई ज्यादा क्यों है? क्योंकि इन्होंने इतने साल दूसरों को मनाया, वो आगे बिजनेस कर रहे हैं, उसका भी शेयर मिल रहा है। तो आप भी शुरू कर दो, आज से भी कर सकते हैं। अगर बिना लॉस के टोटल स्मृति स्वरूप रह के आप ये विघन विघन माया वाया कमजोरी बमजोरी इसको हटा के, ये तो तब है अगर बाप का कनेक्शन टूटा हुआ है। अपनी ताकत से लड़ोगे तो मार खाओगे, अगर बाबा की ताकत आएगी तो पास ही नहीं आएगा, रोशनी के पास अंधकार आ ही नहीं सकता है। अगर ये करेंगे फिर आपको क्या होगा? अभी हम कहते हैं इतने सारों से मेरा स्नेह है, 2-4 से मेरी नफरत है, या इतना प्यार नहीं है, बताओ ये हो सकता है? हूँ आप स्नेह स्वरूप, दुनिया को हम कहते हैं हम स्नेह स्वरूप हैं, दुनिया भी हमको स्नेह स्वरूप देखती है। अंदर से हम किसी किसी से घृणा करते हैं, ये कमजोरी नहीं है क्या? तो फिर तो बाप की शक्ति नहीं है ना, सितारे वाली शक्ति है, मास्टर सूर्य वाली शक्ति तो नहीं है ना। इस वास्ते इसी प्रकार से ये इतना तो मेरा ठीक है, ये गलत है, तो हो गया यथाशक्ति। तब बाबा कहता आपके हाथ में है, अगर सतयुग के पहले नंबर में फर्स्ट 111 को हमने आना है, चलो और बातें छोड़ो, और अच्छे प्रकृति सारी प्रकार के सुख लेने हैं, और उसके ऊपर भी पद लेना है, तो कम से कम हमें टोटल नियमों पर तो चलना पड़ेगा ना, और कुछ नहीं। हमारी गड़बड़ भी जब होती है अगर हम नियम तोड़ते हैं। हमारी दादियां कभी भी अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब करके काम नहीं करती। दिनचर्या रहेगी, भोग है तो भोग पे भी आएंगी, क्लास है तो क्लास भी करेंगी, सारा जिससे मिलना है मिलेंगी भी, टाइम को कंट्रोल किया हुआ है। और हम कहते हैं हम बहुत होशियार हैं, लेकिन दो चार आइटम मिस करके बाकी आइटम करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए मुरली में बाबा ने कहा है कि जो याद को पहले रख के फिर सेवा करते हैं। हम तो कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस, लेकिन पहले शब्द याद है फिर है सेवा। याद को रख के सेवा करते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते, और सेवा की इधर उधर की ऊंचाई निचाई में स्ट्रांग रहते हैं। और जो सेवा को अच्छा मानते हैं तो सेवा अच्छी, लेकिन याद को रख के नहीं करते उनके ऊपर इफेक्ट आ जाता है। इस वास्ते उनको बाबा ने महारथी कहा है। महारथी वह जो याद में रहे, सेवा आप ही होगी आपसे। तो इसलिए असली मतलब यह कि स्मृति में रहो। स्मृति में रहेंगे तो आप सब चीज को जानते हैं। ड्रामा की भी स्मृति है, पाठ की भी स्मृति है, दूसरों के पाठ की भी स्मृति है। अथा शक्ति आपके अंदर रहेगी, आपको कोई हिला नहीं सकता। इस वास्ते यहां तो और जगह तो बाबा कहता है राजा जीतता है तो राजा का राज होता है। यहां हम सब जीतते हैं, अपना अपना स्वराज्य स्थापित करते हैं। इतनी शानदार शक्ति बाबा दे रहा है तो फिर हमें पूरी लेनी चाहिए, कम क्यों लें। थोड़ी लेकर हम कहें हम खुश हो गए तो बाबा कहता अपना भाग्य कम कर लिया। यहां तक बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों को या तो शरीर के रोग के द्वारा उनका हिसाब चुकतू होता है, सबसे नंबर वन है योग, नहीं तो शरीर का रोग। तीसरा क्या है, मन का रोग, वो भी सूक्ष्म है, भाव स्वभाव। आप समझते हैं ये आत्मा मेरे साथ ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रहा है। हम कभी नहीं कहते मुझे कॉलरा क्यों हो गया, मुझे कैंसर क्यों हो गया, मुझे टाइफाइड क्यों हो गया, उसको हम मानते हैं कर्म भोग। और कोई आत्मा आके हमें परेशान करती है, हम समझते अरे ये कर रहा है, वो भी कर्म भोग है। तो बाबा ने कहा ये अच्छी तरह समझ लीजिए, आपको धर्मराजपुरी से बचाने के लिए, आपके कर्मों का हिसाब चुकतू करने के लिए बाबा ने ये युक्ति रखी हुई, इसमें भी घबराना नहीं है। तो इतनी शानदार बाबा हमें लाइट दे रहा है कि ये भी हमारे कल्याण के लिए है। जब है ही कल्याणकारी युग तो कोई चीज हमारे कल्याण के विरुद्ध तो हो ही नहीं सकती। कुछ हो गया तो भी कल्याण, नहीं हुआ तो भी कल्याण, जो हो रहा है बहुत बढ़िया। इसके आगे बाबा ने साफ साफ कहा है आप बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल है। खुद भगवान कह रहा है कि आप बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल है, और एक दो के लिए नहीं कह रहा, मेरे आपके लिए सभी ब्राह्मणों के लिए कह रहा है आप बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल है। अब भगवान हमको इतनी आशीर्वाद दे रहा है, फिर हम कहें हाय हमारा भविष्य पता नहीं कैसा है, तो संशय करना है ना। तो निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। ओम शांति।